This is an ABP Life podcast.
संयुक्त राष्ट्र यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में इसराइल और हमास दोनों को शामिल किया गया है। क्या है ये यूएन की लिस्ट ऑफ शेम? क्या इंडिया कभी इसका पार्ट रहा है? आखिर इसराइल हमास को क्यों इसमें ऐड किया गया है? कौन कौन से देश हैं जिन्हें यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में ऐड किया गया है? इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आज के FYI में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोरी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही, अगर आप आसान भाषा में हम सभी को समझा सके, आखिर ये यूएन की लिस्ट ऑफ शेम है क्या, कब बनी, क्या मकसद था इसका बनाने का? इसको
मासी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। ये जो यूएन लिस्ट ऑफ शेम है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल एक लिस्ट निकाली जाती है जिसमें वो देश या संगठन होते हैं जो कि बच्चों पे अत्याचार करते हैं या बच्चों को ऐसी कार्रवाई में इस्तेमाल करते हैं जो कि समाज या कानून परमिशन नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे बच्चों को सैनिक के तौर पे यूज करना, उनका यौन शोषण करना, उनको ड्रग तस्करी में इस्तेमाल करना, उनको हथियार तस्करी में इस्तेमाल करना या उनपे हमले करना, ये सारे क्वालिफाई करते हैं उस देश या संगठन को यूएन लिस्ट ऑफ शेम में लाने के लिए।
ओके, तो ये यूएन की जो लिस्ट ऑफ शेम है इसमें कौन कौन से देश हैं? इनिशियली कौन से देश शामिल किए गए थे? आज की तारीख में अगर हम देखें तो कौन कौन से देश हैं, अगर आप इन देशों के बारे में बताएं।
मानसी जी, पिछले साल तक यूएन लिस्ट ऑफ शेम में 52 देश या संगठन थे और इस साल दो और देश या संगठन को उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जो पिछले साल तक जो थे वो उसमें से कई नाम जो मैं बताना चाहूंगा, जैसे इस्लामिक स्टेट या अलकायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, यमन, सीरिया और पिछले साल पहली बार रूस को भी इंक्लूड किया गया रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, और इस साल इसराइल और हमस दोनों को इंक्लूड किया गया। और टोटल जो संख्या है देश या संगठन की जो इस यूएन लिस्ट ऑफ शेम में उनके नाम आते हैं वो 54 है, 54 है आज के समय तक। और ये सारे देश या संगठन वो हैं जिन पे ऐसे गहरे आरोप हैं कि उन्होंने बच्चों का मिसयूज किया है, जो कार्रवाई के लिए मैंने आपको कुछ ही पहले बताया।
क्या इंडिया कभी इसका हिस्सा रहा है?
नहीं, जहां तक मेरी जानकारी जाती है भारत कभी इस यूएन लिस्ट ऑफ शेम का कभी हिस्सा नहीं रहा है, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण यह है कि भारत की जो सेना, वायुसेना या नौसेना है, हमारे इन तीनों सैनिक संगठनों में बहुत एक हाई लेवल ऑफ मैं कहूंगा मैच्योरिटी है, मिलिट्री कॉन्फिडेंस है, और हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम पे जितने भी वार हो, हम कभी ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिसकी वजह से हमारे संगठन का नाम या देश का नाम कभी आए हो। मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा मानसी जी।
बिल्कुल बिल्कुल।
मैं खुद भारतीय सेना में जब सेवा करता था तो मैं दो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इलाके में पोस्टेड था सर्विस के दौरान, एक था असम में ऑपराइनो के तहत और दूसरा जम्मू कश्मीर में। दोनों जगह में हम पे कई बार हमले हुए, लेकिन जो हमारी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थी, जो हमारी विचारधारा थी, हमने कभी भी वो रेखा नहीं क्रॉस की जिसकी वजह से कभी हमारा ये नाम आए। और मैंने अपना एग्जांपल दिया और मैं सारे ऑफिसर जेसियोस और सैनिकों के बिहाफ पे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे कि हमारा देश या संगठन का नाम ऐसी मैं कहूंगा दर्दनाक लिस्ट में आए, क्योंकि ये लिस्ट में नाम आना वाकई में एक बहुत ही शर्म की बात है और इसका नाम बिल्कुल सही है, यूएन लिस्ट ऑफ शेम।
इस लिस्ट के बारे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूएन लिस्ट ऑफ शेम में अगर नाम आ जाता है, अगर हम ग्लोबली देखें तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है? क्या इस लिस्ट की क्रेडिबिलिटी है या क्या इस लिस्ट की इम्पोर्टेंस है?
मानसी जी, ये जो यूएन लिस्ट ऑफ शेम है जो 2023 की रिलीज हुई है अभी हाल में ही, इसमें टोटल 30,705 ऐसे वायलेशंस लिस्टेड हैं जिसकी वजह से इन 54 देशों या संगठनों का नाम आया है। और आश्चर्य वाली बात यह है कि इन 30,705 वायलेशंस में से दो तिहाई वायलेशंस सिर्फ 6 देशों में हुए हैं, वो हैं इजराइल, उपली फिलिस्तीन, कांगो, म्यांमार, सोमालिया, नाइजीरिया और सुदान। और इस लिस्ट में नाम आना वाकई में एक अंतर्राष्ट्रीय शर्म की बात है, क्योंकि यह दिखाता है कि वो देश या संगठन किस बुरी तरह से विफल हो चुके हैं बच्चों का सत्कार या बच्चों की इज्जत करने से। हम सारे जानते हैं कि कोई भी इंसान होता है उसके ऊपर गहरे से गहरा कोई प्रॉब्लम आ जाए वो अपने बच्चों तक आंच नहीं आने देता है। वो दो रोटी कम खा लेगा लेकिन अपने बच्चों को पूरा खाना देगा। और अगर उसी हाथ पे कुछ देश या संगठन ऐसी कार्रवाई करें जिससे बच्चों का कत्लेआम हो या उनको ऐसी चीजों में इस्तेमाल किया हो जिससे उनकी उनका बचपन ही नहीं उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए, तो इससे ज्यादा और शर्म वाली बात क्या होगी।
चूंकि नाम तो आया है ये इसराइल का भी, और जो भी आपने कंट्रीज बताई कि बच्चों पे जिस तरह से अत्याचार होते हैं और इस वजह से अगर लिस्ट में नाम भी आते हैं, क्या कोई असर होता है फिर इन देशों का इनके इंटरनेशनल रिलेशंस पर? क्या ऐसा देखा गया है अगर एक बार किसी कंट्री का नाम इस लिस्ट में आ जाए तो?
मानसी जी, इस लिस्ट में नाम आने से दो इसके बड़े फॉलोअर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि जब संयुक्त राष्ट्र इस लिस्ट ऑफ शेम में उन संगठनों या देशों का नाम लेती है तो अगली जो कार्रवाई होती है वो होता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके पास ये फाइल या लिस्ट जाती है और फिर सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि उन देशों पे या उन संगठनों पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या उनपे कोई आर्थिक पाबंदी लगानी चाहिए, क्या उनपे अंतर्राष्ट्रीय बैन करना चाहिए, या हो सकता है कि उनको जो देश है उनको संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से भी बर्खास्त किया जाए। तो ये सारा जो है जो एक्शन होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है। दूसरा जो फॉलोअप होता है इस लिस्ट में नाम आने से वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती बहुत होती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होती है वो उस देश या संगठन के लिए वाकई में एक शर्म वाली बात होती है, क्योंकि जब इस लिस्ट में नाम आता है जो बाकी देश हैं जिनका ऐसे देशों या संगठनों के साथ ताल्लुक होता है या व्यापार होता है या रक्षा के रिलेशंस होते हैं, उस पे आन जरूर पड़ती है, क्योंकि अगर कोई देश ऐसे देशों के साथ व्यापार करता है या रक्षा सौदे करता है तो उन देशों की आवाम में ही आवाज उठती है कि जब वो देश बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं तो हम उनके साथ व्यापार क्यों करें, उनके साथ रक्षा सौदे क्यों करें। तो कोई भी देश नहीं चाहता है कि उनका नाम कभी भी इस लिस्ट में आए। कुछ संगठन हैं जिन पे फर्क नहीं पड़ता, जो वैसे ही इतने खतरनाक खौफनाक हैं, आप चाहे एक लिस्ट में नाम डाल दो, 100 लिस्ट में डाल दो, चाहे अलकायदा हो गया, चाहे बोको हराम हो गया, ये तो है ही आतंकवादी संगठन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको जो पैसा मिलता है कोई इनको व्हाइट मनी या ऑफशोर मनी तो मिलता नहीं है, सारा इनको काला धन मिलता है। तो इन संगठनों पे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ देशों पे बहुत ज्यादा फर्क।
जैसे आपने रशिया का जिक्र किया, लास्ट ईयर करा गया है, क्या फर्क पड़ा?
मानसी जी देखिए, रशिया पे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि रशिया खुद ही बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था है और वो एक सुपर पावर है। हम सारे जानते हैं दुनिया में 3 सुपर पावर है, रूस, अमरीका और चीन, और इन तीनों देशों के पास पैसा भी बहुत है, सैनिक शक्ति भी बहुत है, तो इनका किसी भी लिस्ट में ना आना इसलिए फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मैंने जैसे बताया इनके पास आर्थिक शक्ति बहुत है, दूसरा ये तीनों देश खुद ही परमानेंट 5 के सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में, तो अगर कभी इनका नाम आ भी गया और इनपे कोई कार्रवाई होनी भी कोई सोचेगा तो वो अपना वीटो यूज करके उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो लिस्ट में नाम आना अलग चीज है लेकिन कार्रवाई होना एक अलग चीज है। अब तक रूस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लिस्ट पे जरूर नाम आया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कि जैसे मैंने अभी बताया उनके पास वीटो राइट्स हैं क्योंकि वो पर्मानेंट 5 हैं संयुक्त राष्ट्र।
जो आपने कहा कार्रवाई होती है, कार्यवाही होने को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, आर्थिक मदद के अलावा भी अगर कोई बेदखल भी करता है संयुक्त राष्ट्र के उससे या सदस्यता जाती भी है, क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, मतलब क्या क्या गुजरना पड़ेगा किसी देश को जो अपने आप में काबिल नहीं है?
मानसी जी देखिए, कोई भी देश को अगर संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय आइसोलेट हो जाता है, अधिकतर देश उसके साथ फिर जो कूटनीतिक संबंध भी आसासा तोड़ना बंद कर देते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र से जो मदद मिलती है, चाहे आर्थिक मदद मिले, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब कोई आपदा मेडिकल आपदा आ जाए तो वो मदद करते हैं, तो इस संयुक्त राष्ट्र से कोई भी उन्हें सहायता नहीं मिलती है, उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि यूएन लिस्ट ऑफ शेम के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। जब 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने डिसाइड किया कि हम चाइना को रिकॉग्नाइज करेंगे और ताइवान को डी रिकॉग्नाइज करके उसको उसकी सदस्यता निकाल देंगे, हालांकि ताइवान का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि प्रश्न था, ताइवान को जब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से बर्खास्त किया गया तो वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया, सारे देशों ने एक एक करके उसके साथ कूटनीतिक जो संबंध थे वो तोड़ दिए। आज की देश में दुनिया में 195 देश हैं जिसमें से 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और सिर्फ 12 देशों का कूटनीतिक रिलेशन है ताइवान के साथ। तो ताइवान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय आइसोलेट हो गया और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो इसी पैमाने पे अगर हम देखें, अगर कोई भी देश पे कार्रवाई हो जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ता है, देश कई बाकी देश उसके साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को बिल्कुल ही एक अकेलापन महसूस करता है। और हम सारे जानते हैं आज की इस ग्लोबल दुनिया में हर देश को किसी ना किसी देश की सहायता पड़ती है, कोई भी देश हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे बड़े बड़े देश भी हो, वो अकेले अपने दम पे तरक्की नहीं कर सकते, उन्हें कोई ना कोई देश की सहायता चाहिए होती है और जब ऐसा होता है तो उस देश के विकास पे बहुत फर्क पड़ता है।
आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस लिस्ट में हालिया इजराइल और हमास दोनों को शामिल किया है, इस पर कितना असर होगा, क्या असर होगा?
मानसी जी देखिए, जहां तक इजराइल की बात है वो तो पूरा एक डेमोक्रेटिक देश है और उसका इस लिस्ट पे आना उसके लिए शर्म की बात तो है ही है, प्लस उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा ही इस रिपोर्ट में अपने देश के नाम को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बयान में कहा कि मैं इस रिपोर्ट में इसराइल के नाम का पूरा खंडन करता हूं, हमारी जो सेना है वो सबसे दुनिया की व्यावसायिक सेना है, कभी हमारी सेना ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो असर तो दिखना इसराइल पे शुरू हो गया है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अब जो मेजर असर दिखेगा जब सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल पे अगर कोई कार्रवाई करता है, लेकिन शायद कोई कार्रवाई ना हो क्योंकि अमरीका वीटो पावर यूज करेगा, क्योंकि अमरीका इसराइल का सबसे क्लोजेस्ट मित्र है, एलाय है, वो इसराइल पे कोई कार्रवाई आने नहीं देगा। लेकिन हाँ, शर्म की बात तो है और इसका तो सीधा पुख्ता हमने देखा कि इसराइल के प्रधानमंत्री ने इस रिपोर्ट को सीधा रिजेक्ट कर दिया। जहां तक हमस की बात है, अब हमस एक संगठन है, हमस को जो पैसा मिलता है वो संयुक्त राष्ट्र से तो कुछ मिलता नहीं है, उसको जो पैसा मिलता है उसको अरब देशों से मिलता है, उसको मुस्लिम मेजोरिटी देशों से मिलता है और सबसे बड़ी बात उसको रूस और चीन से मिलता है। तो ये जो सारे देश हैं, चाहे रूस चीन हो, चाहे मुस्लिम मेजोरिटी हो, चाहे मिडल ईस्ट के अरब देशों, वो तो हमस की मदद करते ही रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें आर्थिक तरीके से दोनों पे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये इसराइल हमस युद्ध खींचा तो इसराइल पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जब हमस ने इसराइल पे हमला किया, तब से लेके आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि जितना लंबा ये युद्ध इसराइल खींच रहा है उतना वो अपने लिए दिक्कत कर रहा है। और हम देख रहे हैं यूएन लिस्ट और शेम में इसराइल का नाम आना वाकई में उस बात को सही साबित करता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 अक्टूबर से अब तक कहते हैं।
तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, हमें डिटेल में बताने के लिए आखिर ये यूएन लिस्ट ऑफ शेम क्या है और इसमें जुड़ना वाकई कितनी शर्मनाक बात है। थैंक यू सो मच सर।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।